ओम शांति। स्वाभिमुख कार्यशाला का प्रथम सत्र आप सभी ने संपन्न किया। हरेक व्यापारी भाई बहनों के और उद्योगपति भाई बहनों के मन में बहुत ही शुभ भावनाएं होती है। मैं आप सबसे ये पूछूं कि आप अपने ग्राहकों के लिए अच्छे से अच्छा क्या क्या करना चाहते हैं, आप क्या बताएंगे? जरा खड़े होके बताएंगे एक एक बार। हाँ, संतोष, संतुष्ट करना चाहते, अच्छी क्वालिटी की चीजें देना और अच्छा व्यवहार करना और ग्राहक को ऊंची नजर से देखे, भगवान का रूप समझकर व्यवहार करें और उनकी उनकी कंप्लेंट सुनना और उनका समाधान करना। बहुत अच्छा, कोई गलती ना। हाँ, कम से कम रिजनेबल प्राइस में उनको चीज मिले, अच्छी सर्विस। अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे से अच्छा क्या करना चाहते हैं? जो आपके साथी है, कारीगर है, कर्मचारी है ऑफिस में, हाँ, अपने साथ लेके चलिए। हाँ, वो हमारी एक टीम का एक अंग है। पारिवारिक संबंध भी है, सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं है, हमारे कामकाज के संबंध सिर्फ नहीं। बहनों में से बताएंगे जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे कर्मचारी है, कारीगर है, साथी है, उनके साथ अच्छे से अच्छा आप क्या करना चाहते, अच्छा व्यवहार कर। हाँ, आवश्यकता पर मदद करें, उनके परिवार के प्रॉब्लम्स के सुने। हाँ, फैमिली वेल। अब आप अपने डीलर्स के लिए क्या अच्छा करना चाहते, डीलर्स के लिए? हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा माल मिलता है यहाँ से और मुनाफा भी मिलता है और उसे, हाँ, वही हमारे एक्सटर्नल, हमारे हाथ और पांव हैं जिसके आधार पर हम चलते हैं। कमिटमेंट हो उनके साथ, तो इस प्रकार आप अपने ग्राहकों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, अपने डीलर्स के लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा करना चाहते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि जो आप अच्छा अच्छा करना चाहते हैं, क्या वो सब प्रैक्टिकल कर पाते हैं? आपने तो नहीं भी बहुत जोर से बोला, ट्राई कर। मतलब सब कुछ हम नहीं कर पाते हैं, बस इसको कहते हैं लिमिट्स। ये है लिमिट्स, ये है हमारी सीमा जिसमें हम बंधे हुए हैं कि भाई हम ये नहीं कर पाते, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं बदल नहीं सकता हूँ, मेरी रीति ऐसी है, मैं चेंज नहीं हो पाता। तो ये है हमारी लिमिट्स, इसको कहते हैं लिमिट्स, सीमाएं जिसमें हम बंधे हुए हैं, और उस लिमिट्स को ब्रेक करना वो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो, सिर्फ हमें शांति से बैठकर उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। एक ऐसे ही व्यक्ति यहाँ पर आए थे इस प्रकार के कार्यक्रम को अटेंड करने, और उनकी यही कंप्लेंट थी कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे विचार है, बहुत क्रिएटिविटी है, प्लानिंग है मेरे पास, लेकिन कोई मुझे सुनता ही नहीं, ये उसकी कंप्लेंट। तो हम लोगों ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप हमें भी नहीं सुनिए, आप हमें भी नहीं सुनिए, और ये एक सत्र आप शांति से ज्ञान सरोवर में घूम के आइए, साइलेंस में आप वॉक करके आए। वो व्यक्ति गए और 2 घंटे के बाद जब वो आए तो बहुत उत्साहित थे, और उन्होंने कहा आकर के कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया। तो हम सभी ने पूछा कि भी क्या समाधान आपको मिल गया। तो उसने रियलाइज किया कि मैं ही किसी की नहीं सुनता हूँ तो मेरी कौन सुनेगा, मेरे अपने अंदर ईगो है, मैं ही किसी की नहीं सुनता हूँ तो मेरी कौन सुनेगा। ये उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और उसको समाधान मिल गया। तो कई बार हमने देखा है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, बातें हमारे सामने हैं, उनका सॉल्यूशन हमारे अपने अंदर ही होता है। आवश्यकता है सिर्फ शांति से उस पर सोचने की, गौर करने की और उस बात को रियलाइज करने की। इसलिए इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम बनाया गया है कि अब हम अंतर्मुखी बने, खुद को देखें और उस कला का विकास करें ताकि हमें काफी सॉल्यूशन अपने आप से ही मिल जाए। अब इस सत्र में हम इस विषय पर देखेंगे सफलता, एक नए दृष्टिकोण। सफलता हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं और यही हमारा मुख्य इस डायलॉग का थीम है कि सक्सेस हम अपनी बिजनेस इंडस्ट्री में कैसे प्राप्त करें और उसका जो मेन फोर्स है, गाइडिंग फोर्स जो है वो स्पिरिचुअलिटी। तो सफलता व्यक्ति अपने जीवन के तीनों क्षेत्र में पाना चाहते हैं। आपने ये देखा ट्रांसपेरेंसी पहले कि आज का व्यापारी जो है वो बीच राह की पहली बन गया है, ये ट्रांसपेरेंसी आपने देखी है कि एक तरफ उसके सामने उसका बिजनेस है जिसके लिए भी उसे काफी समय देना पड़ता है, काफी बुद्धि लगानी पड़ती है और अब तो ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है, लिबरलाइजेशन जब से हुआ है, प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ है, काफी चुनौतियां हर व्यापार और उद्योग के सामने हैं और इसलिए अगर इस ग्लोबल कंपटीशन के समय में अपने आप को खड़ा रखना है तो उसे अपने बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए भी काफी एनर्जी लगानी पड़ती है। दूसरी तरफ उनकी अपनी फैमिली है, रिलेशंस है, अगर वो घर के प्रति, संबंधों के प्रति समय नहीं देता है तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, परिवार की भी कंप्लेन रहती है और उसको भी जो परिवार से फिर प्यार, साथ, सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वहां भी उसको ध्यान देना है। और तीसरी चीज है वो है हम स्वयं। कई बार हम रिलेशंस को निभाने में भी काफी ध्यान देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी उठाते हैं, लेकिन उसमें हम स्वयं को मिस कर जाते। खुद के प्रति जो हमें समय देना है अपने स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए या अपने फिजिकल वेलबींग के लिए जो हमें समय देना है, शक्ति लगानी है, वो हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें अपना जो विकास करना है, अपना आत्म कल्याण जो करना है, अपनी आत्म उन्नति जो करनी है वो हम नहीं कर पाते हैं। और जब हमारी आंतरिक शक्ति, गुण और योग्यताओं का विकास हम नहीं कर पाते हैं तो ये दोनों फील्ड भी हमारे लिए और प्रॉब्लम के कारण बन जाते हैं, उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और समस्याएं पैदा होती। इसलिए एक तरफ हमें खुद के लिए भी समय देना, एक तरफ है परिवार समाज के लिए भी समय देना और तीसरा है कि व्यापार के लिए भी हमें समय देना है। तो इसलिए हमारा जीवन आज एक बीच राह की पहली बन गया है और जीवन अब आसान नहीं रहा है, ये हम सबका अनुभव है, चाहे पारिवारिक जीवन चाहे व्यावसायिक जीवन, वो अब सरल नहीं रहा। आपने देखा होगा कि जो जीवन हम सहज चिंतन से चलाते थे वो आज हम चिंता से चलाते। पहले लोग कम साधन में, कुदरत की गोद में बहुत अपना नैसर्गिक सादा सरल जीवन जीते थे। आज जीवन जीने के लिए हमें हर बात में चिंता करनी पड़ती और इसलिए कहते ना, व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक की हर क्रिया और बात के लिए उससे चिंता है। बच्चा पेट में है, अभी जन्म भी नहीं लिया और हमें चिंता है नाम क्या रखेंगे और कौन से स्कूल में उसको एडमिशन मिलेगा। तो जन्म से लेकर जीवन के अंत तक की हर बातों के लिए चिंता है। और चिंता के लिए हम सभी कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप गुण ज्ञान। तीनों बात बताए, रूप फिजिकली भी हम डैमेज होते हैं, गुण स्पिरिचुअली भी हमारे में गुण कम होते हैं और नॉलेज मेंटली इंटेलेक्चुअली भी हम डाउन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। तो आज हमारा जीवन सहज नहीं रहा, हमारे सामने कुछ पारिवारिक समस्याएं और उसके कारण जो रिलेशंस हमने सुख सहयोग साथ और खुशी के लिए बनाए थे वही संबंध आज कलेश के कारण बन गए। संप्रेषण माना कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा उत्पन्न होती और इसलिए एक कवि ने इतने तक जीवन की ये व्याख्या कर दी कि जीवन क्या है, अर्थ और अनर्थ से भरा, बेसमझी और गैर समझी से भरा, या तो समझ ही नहीं है कोई बात की और है तो वो गलत है। इसलिए बेसमझी और गैर समझी से जीवन भरा हुआ। दूसरी बात कि हमारे आकांक्षाएं बहुत, इच्छाएं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। मनुष्य की परेशानी का मूल कारण है इच्छाएं, जो हैं मेरे पास वो कम है, मुझे और भी चाहिए। ये रोग आज हर इंसान को लगा, मेरे पास एक गाड़ी है तो मुझे दूसरी चाहिए, एक दुकान है तो मुझे दूसरी दुकान चाहिए। इस प्रकार हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इसलिए सतत मानसिक द्वंद में हम रहते, मेंटल रिलैक्सेशन की पोजीशन नहीं है लेकिन मन सतत संघर्ष में रहते। तो नेचुरली हमारी मानसिक शक्ति खर्च होती है, व्यक्ति एग्जॉस्ट हो जाता है और उसके अंदर थकान हो जाती है, उससे जीवन में कोई खुशी नहीं रहती। तो आकांक्षाएं और तीसरी बात परिस्थितियां, विभिन्न परिस्थितियां, चाहे वो व्यक्ति सर्जित है, प्रकृति के द्वारा सर्जित है, कोई भी, हमारे सामने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं जो तनाव उत्पन्न करती। अचानक परिस्थितियां आती, कभी अचानक बीमारी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज आती है जिसमें बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। जीवन माना परिस्थितियां आएगी ही और उसमें भी हम कलयुग के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं जहां हर बात में विषमता है और वो कॉन्स्टेंट हमारे लिए टेंशन क्रिएट कर। इसी प्रकार हमारे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी ये समस्याएं, कंपटीशन, जो आपने देखा है कि कांस्टेंट इतनी कंपटीशन है कि व्यक्ति रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है सतत। दिनचर्या, रोज का रूटीन आपका एक तरीका, रोज सुबह आप उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, सामान सारा खोलते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, ग्राहकों को डील करते हैं, शाम को समेटते हैं, हिसाब लगाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर आगे की बातें सोचते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह उठते हैं। एक सरीखा रूटीन, और जब कोई चीज रूटीन हो जाती है तो उसमें व्यक्ति को उमंग नहीं रहती, उसमें रुचि नहीं रहती है, उत्साह नहीं आता है और इसलिए उमंग उत्साह की कमी और व्यक्ति में निराशा सा अनुभव उससे होना लगता है। और अगेन सिचुएशंस बिजनेस और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की परिस्थितियां। एक तो आपको बताया कि ग्लोबल कंपटीशन और उसमें हमें खड़ा रहना है और कमाना है, तो वो एक टेंशन की बात हो जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी सदा चेंज होती रहती है, उसके कारण भी टेंशन उत्पन्न होते हैं। टैक्स रेट बढ़ते हैं, फिर उसके लिए लड़ो, बात करो, मेहनत करो। जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, उन कर्मचारियों का असंतोष, वो भी हमारे लिए एक टेंशन होता है। उनकी सतत मांगे बढ़ी रहती है, ठीक से काम नहीं देते हैं, टाइम से आते नहीं हैं, जवाबदारी से काम नहीं करते हैं, तो कर्मचारियों के संदर्भ में भी कोई ना कोई असंतोष की बात बनी रहती है। और अचानक जो बातें आती है उसको पार करने की अगर मेरे में क्षमता नहीं है, पहचानने की शक्ति नहीं है, तो भी रिजल्ट है कि टेंशन उत्पन्न होता है। इस रीति जो समाज का ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ग है, व्यापारी और उद्योगपति, जो एक जवाबदार वर्ग है, देश की समृद्धि के लिए जो निमित्त वर्ग है, वो आज पाया गया है कि वो सतत टेंशन में रहे और उसमें फिर प्राप्ति के लिए, कमाई के लिए जब आसान तरीके नहीं है, सहज मार्ग नहीं है, तो हम गलत मार्ग भी अपनाते हैं, गलत मींस भी ले लेते हैं और अल्टीमेट जो हमारे जीवन के मूल्य है वो हमारे कार्य क्षेत्र से कम होते जाते। तो इस प्रकार आज की सिचुएशन ये, और व्यक्ति इसलिए सफलता प्राप्त करना वो एक मुश्किल चीज समझता है। भाई सक्सेस बहुत मेहनत की चीज है और मुश्किल चीज हमें लगती है। तो आज हम सफलता किसको कहते हैं, उसकी रियल में डेफिनेशन क्या है, एक नई दृष्टि से हमें सफलता को समझना है। तो मैं आपके सामने तीन सिचुएशन रखती, आप उसको पढ़िए और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या इसको हम पूर्ण सक्सेस कहेंगे। ये एक सिचुएशन, रामू के परिवार में आपस से समझ बहुत अच्छी, उसके बच्चे अनुशासित हैं और उसे बेहद स्नेह करते। क्या रामू सफल है? सफलता की परिभाषा हमें नए ढंग से समझनी है और उस हिसाब से आप सोचिए, क्या रामू सफल है? हाँ, जो कहते हैं वो हाथ ऊपर करो। सब नहीं कह, दूसरा कोई जवाब? हाँ हाँ, सापेक्ष है कि वो अपने फैमिली में सक्सेसफुल है, इसलिए इसको भी पूर्ण सफलता नहीं कहेंगे। अब ये दूसरी सिचुएशन कि विवेक की बहुत अच्छी नौकरी है तथा उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इकोनॉमिकली भी वो साउंड है, समाज उसे एक सौम्य व्यक्ति के रूप में जानता है, उसकी पर्सनालिटी के लिए भी लोगों को रिस्पेक्ट है, क्या विवेक सफल है? यहां दो चीज है कि वो आर्थिक रूप से सफल है, पर्सनली सफल है, लेकिन परिवार का, इसलिए इसको भी पूर्ण सफल हम नहीं कहे। और थर्ड सिचुएशन है आपके सामने कि प्रमोद का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, पिछले महीने से उसे 50% अधिक लाभ हुआ है और उससे वो बहुत खुश है, क्या वो सफल है? हाँ, वो अपने व्यापार में सक्सेस है, लेकिन पर्सनल और रिलेशन में पता नहीं। तो सफलता किसको कहे? तीनों सिचुएशन में आपने जवाब दिए कि भाई वो पूर्ण सफल नहीं कहा जाएगा, इसमें है इसमें नहीं, इसमें है इसमें नहीं। तो अब आप बताइए सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता का अर्थ है जीवन के तीनों क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना, और उसका आधार है कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो शक्तियां हैं, चाहे सोचने की, बोलने की, कर्म करने की, समय की, जो भी हमारी स्थूल सूक्ष्म शक्तियां हैं, उसका तीनों क्षेत्र में बरोबर के हिस्से से उनको लगाना, तभी हमें जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ हम परिभाषा आपके सामने रखते हैं। व्यापार में सफलता क्या है? आपने अपने बिजनेस में बहुत अच्छी कमाई की, एक सिचुएशन जो आपके सामने रखी थी प्रमोद की। अब तक हम ये समझते रहे कि वो व्यक्ति बहुत सफल हुआ है, अब तक हमारी समझ तो यही थी ना कि भाई उसको बहुत नफा हुआ, माना वो बहुत सक्सेसफुल रहा अपने बिजनेस में। लेकिन जीवन में सदा एक ही परिस्थिति नहीं रहती, कभी हमें प्राप्ति होती है, कभी नुकसान भी, कभी हम जीत भी जाते हैं, कभी हम हार भी जाते हैं, कभी हमें बहुत मान भी मिलता है, कभी अपमान भी मिलता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। जीवन माना परिस्थितियां, और इन परिस्थितियों में रहते हुए हमें सफल होना है, इसलिए हमें प्राप्ति हुई हम खुश हो गए, हमें नुकसान हुआ हम दुखी हो गए, तो उसको हम सफल नहीं कहेंगे। इसलिए सफलता की वास्तव में परिभाषा है एक अर्थ में कि प्राप्ति और हानि में स्थिर रहने की क्षमता, वास्तव में वो सफलता है। हमने 50% 60% नफा कर लिया, वो सफलता नहीं। हम नुकसान में गए, असफल हो गए, नहीं। प्राप्ति या हानि की सिचुएशन तो आती ही रहती है, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में मैं अपने आप में स्थिर रही, मेरा विवेक स्थिर रहा, उसको कहेंगे सफल। इसलिए गीता में कहा है कि निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय लाभ हानि, निंदा स्तुति में समान स्थिति जिसकी रहती है वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रज्ञा माना विवेक, विजडम। वो विवेक परिस्थिति जब आती है तभी हिल जाता है ना, जब सब कुछ अनुकूल है तब तो हमारी बुद्धि ठीक रहती, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तब हम अपने वैल्यूज को छोड़ने लगते हैं, अपनी मन की स्थिति को संभाल नहीं पाते। और इसलिए कितने केसेस आप सुनते होंगे कि भाई नुकसान हुआ, व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया, फलाना प्रॉब्लम हुआ, लॉकअप हुआ, स्ट्राइक हुई, उसकी मन की स्थिति पर असर आ गया, वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, तो वो सक्सेस जीवन में नहीं। हम ये जीवन में पक्का कर ले कि ये दोनों प्रकार की सिचुएशन आनी है, सफलता वो है कि मैं दोनों में स्थिर रहा। सफल हो जाए तो हम धरती से अधर नहीं चलने लगे, अभिमान नहीं आ जाए, और नुकसान हो जाए तो हम निराश हताश न हो जाए। एक राजा की कहानी आप सबको पता है कि वो उसके पास उसे गिफ्ट में एक संत ने अंगूठी दी थी और उस पर लिखा था ये भी चला जाएगा। है कहानी पता है ना कि वो जब हार गया और दुखी होके अपनी सेना के साथ लौट रहा था, अचानक उसकी अंगूठी पर नजर गई कि ये भी बीत जाएगा। फिर उसके अंदर उमंग उत्साह आ गया, फिर से उसने अपना सैन्य जुटाया और डबल उमंग से उसने आक्रमण किया और वो जीत गया। जब जीत कर वापस आ रहा था, गर्व से फुला नहीं समा रहा था, अचानक फिर नजर गई अंगूठी पर कि ये भी बीत जाएगा। सफलता वो है कि हार जीत जय पराजय मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी में हम मन की स्थिति को समान रख सके, वो क्षमता अपने में प्राप्त करना वो है सर। और उस दृष्टि से आप बताइए कि वो क्षमता हमें अपने आप में डेवलप करने के लिए वही स्पिरिचुअलिटी को अपना गाइडिंग फोर्स बनाना। दूसरी बात, सफलता की दूसरी परिभाषा अब मैं आपके सामने रखती हूं कि हमने बहुत अच्छा बिजनेस करके बहुत अच्छा व्यापार कर उद्योग में कमा के अपने आप को हमने बहुत संपन्न बना दी, हमारे पास सुख सुविधा के सब साधन आ गए, अच्छा घर बन गया, कार मोटरें आ गई, घर में भी सुविधा के सारे साधन आ गए, हम हर प्रकार से साधन संपन्न सुखी व्यक्ति बन गए, हमें भोगने के लिए आनंद के लिए सुख के लिए कोई अभाव नहीं। क्या इसको हम सक्सेस कहेंगे? हम यही अब तक मानते रहे कि जीवन का यही सफल, हमारी यही सही अचीवमेंट, और इसलिए हमें एक तो अंदर से ये बात रहती है, परिवार वालों की भी कंप्लेंट रहेगी, इनके पास तो ऐसी गाड़ी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, देखो वो आजकल कमाया कितना आगे बढ़ गया और आप तो वहीं के वहीं रहे। आप बहुत ईमानदारी की नीति की बातें करते हैं, हम साधारण के साधारण रहे, ये बेईमानी करके कितना आगे बढ़ गए। इसलिए कंपैरिजन ये हमारे दुख का कारण होता है। और हमें इसलिए कहते हैं ना, अभी व्यक्ति दुखी क्यों है, व्यक्ति दुखी क्यों है, क्योंकि उसका दूसरा पड़ोसी सुखी। एक होता है व्यक्ति अपने कारणों से दुखी है, एक है कि दूसरों के कारणों से दुखी है, एक है कि दूसरे सुखी हैं इसलिए मैं दुखी। तो परिवार वालों की ये सदा कंप्लेन रहती, हमारी अपनी भी अब तक पर्सनल मान्यता यही रही कि हमारे पास साधन कम है इसलिए हम दुखी हैं, हम पिछड़े हुए हैं। लेकिन वास्तव में जीवन की सफलता और सही आनंद हमें किस में प्राप्त होता है? सफलता की दूसरी व्याख्या, प्राप्ति को सर्व के साथ आदान प्रदान करने की। जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, कमाते हैं, सुख सुविधा के साधन बनाते हैं, वो केवल हमें नहीं भोगने, केवल हम खुद ही खाएं पिए भोगे, वास्तव में वो सफलता नहीं, लेकिन हम दूसरों के साथ शेयर करें, अन्य के लिए भी कुछ करें, तब तो हमारे जीवन की उपयोगिता है, तब तो हम कहेंगे कि हमारा जीवन सार्थक। नहीं तो हमने खुद ही कमाया, खर्च किया, खाया पिया और खत्म किया, तो वो कोई जीवन थोड़ी हो। हम विश्व को एक परिवार कहते हैं, हम अपने साथियों के साथ, अपने आसपास वालों के साथ, मानव जाति के साथ अपनी प्राप्तियों को शेयर। दूसरों के लिए भी उपयोगी बने। हमारी संस्कृति तो हमें यही सिखाती है कि तेन त्यक्तेन भुंजिताः, तुम उसका त्याग करके उसका आनंद, खुद खाने में जो आनंद नहीं है वो एक दूसरे आवश्यक व्यक्ति को खिलाने में जो आनंद, उससे जो दुआएं हमें प्राप्त होती है वो हमारी कमी। इसलिए यूएन के द्वारा 2000 के वर्ष को जो कल्चर ऑफ पीस अनाउंस किया गया था, उन्होंने 6 पॉइंट का उनका जो बुलेटिन बाहर किया था उसमें एक पॉइंट उन्हों का ये था कि अगर हमें शांति की संस्कृति लानी है तो शेयर विथ अदर्स। जब तक दूसरे अभाव में हैं, हम आनंद नहीं ले सकते। इसलिए जितना हो सके केवल खुद नहीं भोगे, देते जाए। हमारी संस्कृति है देव संस्कृति, दाता संस्कृति। भारत को हम क्या कहते, देव भूमि कहते, देवता मीन्स देने वाला, देवताओं के हाथ कैसे बताते, दाता वरदाता, देना है। आज हम हैं क्या बन गए, देवता है या लेवता, लेवता बन गए, लेने वाले, चाहिए, पकड़ने वाले, हम पकड़ते हर चीज, हम पकड़ना चाहते। लेकिन संसार का नियम है, संसार की कोई भी चीज आपकी नहीं। वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है? इसलिए भोगने में सफलता नहीं है, मिलकर के उसका आनंद ले वो सफल। कहा है ना कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्त, हम भोग नहीं भोगते हैं, हम समझते हैं कि हम ही खुद खाए पिए मौज करे आराम से रहे, भोग हम नहीं भोगते हैं लेकिन भोग हमें भोगते। इसलिए देना है, बांटना है, चाहे चीजें, चाहे अनुभव, चाहे आपका चिंतन, बाकी तो आपका खुटेगा नहीं, बढ़ेगा। और देने का आनंद, जिनको प्राप्त हुआ उनकी दुआएं, ये सब प्राप्ति ही प्राप्ति है, और उससे संतुष्टता और खुशियत। सक्सेस की तीसरी व्याख्या अब मैं आपके सामने रखती हूँ कि जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, नए नए शिखर सर करने हैं, तो हमें सीखना, जहां हमने सीखने के द्वार बंद कर दिए वहां हमारी स्थगितता, वहां हम रुक जाते। इसलिए व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है, हमें सबसे सीखने की क्षमता, नया नया सीख, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार प्रयास करते रहे और सफलता को पाते। दुनिया में जिन्होंने भी संशोधन किए हैं, चाहे वो लाइट के बल्ब का जो संशोधन किया था, एडिशन की कहानी आप सबको पता होगी कि 200 बार प्रयास करने के बाद उसे सफलता मिली। अब्राहम लिंकन के जीवन को आप पढ़िए, कितनी बार वो इलेक्शन हार गए और आखिर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट। सीखना, सीखते रहने से हमारी विशालता और विशाल पर्सनालिटी डेवलप होती है और हम सफल बनते, हम और आगे बढ़ते। हम अपने साथियों से सीखे, छोटों से सीखे, बड़ों से सीखे, जहाँ जाएं, जिससे मिले हम सीखें। वो ईगो हम अपने में डेवलप ना कर ले जो हम एक दो को सुने नहीं, अच्छी बात को स्वीकारे नहीं, अपने आप में हम समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ और बरोबर हूँ, नहीं। सीखते सीखने से चौथी बात आती है नवीनता, क्रिएटिविटी, सक्सेस। नया नया करने से जीवन भी उमंग उत्साह का रहता है और हमारे साथ जो होते हैं उनको भी हमारे में से प्राप्ति। आप देखते होंगे कि लोग अपनी प्रोडक्शन में थोड़ा भी नवीनता करते हैं और मार्केट में आगे आ जाए, थोड़ा सा चेंज करके नई प्रोडक्ट समाज के आगे वो रखते, अपनी दुकान में थोड़ा सा व्यापार की एक नवीनता लाते हैं और उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती। तो नवीनता अपने में लाए, जो रोज के काम है वो सामान्य नहीं बन जाने। वे रोज ग्राहकों से बात करनी है तो हम चिढ़ जाते, रूढ़ हो जाते, हमारे शब्दों में कठोरता आ जाती, और वहां ही कोई थोड़ा ही मैनर से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं तो लोग उनके पास सिर खींच जाते, जाना चाहते। इसलिए नवीनता लाए अपने व्यापार के कला में, व्यवस्था में, अपने डीलिंग में, अपने आप। तो वास्तव में सफलता उसको कहते। तो ये है सफलता की नई परिभाषा। अब वो सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे में क्या होना चाहिए, वो एक गेम के द्वारा हम समझ। उस गेम में हमें दो टीम चाहिए, आठ आठ। एक टीम इस तरफ आ जाए, कौन पार्टिसिपेट करे, मुश्किल नहीं है, बड़ी एंजॉय करने वाली गेम। इस तरफ आठ, इस तरफ आठ, हाँ नीचे आठ कर लीजिए, हाँ बस ये आठ हो गए। कितने हुए आपके? सिर्फ आठ। इधर भी आठ कर लीजिए, इधर भी आठ, एक बैठ जाइए, कोई बात, ये एंजॉय कर, इधर भी आठ कर लीजिए। अब ये दो टीम है, इस टीम का नाम क्या रखेंगे? सफल टीम, वाह। और इस टीम का नाम? विनर, वाह। ये तो विनर टीम है, ये सक्सेसफुल टीम। तो अब गेम क्या कर रहे हैं? अब ये दो टीम है और इन्हों को अपने पास जो कुछ रिसोर्सेस है, उनके पास जो कुछ उनके पास साधन है, इनको अपनी चीजों से लाइन बनानी है, आपको अपनी चीज से लाइन बनानी, लंबी लाइन। जिसकी लाइन लंबी होगी वो विनर। जो आपके पास है, पांच मिनट का समय हम देते, दस यस, इस लंबी बनाओ,
लंबी बनाना,
लंबी कुछ भी आपके पास जो है, एक लंबी करते जाइए, ऐसे घुमा लीजिए लाइन को। हाँ हाँ, जो है उससे वो लगेंगे। एक मिनट, एक मिनट है, गेम इज ओवर। किसकी लंबी हुई भाई? इस टीम की लंबी हुई, विनर टीम। प्रैक्टिकल एक छोटी सी गेम के द्वारा हम सबने देखा कि सफल होने के लिए इन सबने क्या किया। अपना बेल्ट रखा, रुमाल रखे, कागज रखे और आखिर सब कुछ लगा दिया, फिर क्या किया? खुश हो गए। खुद सो गए कि भी हमारी लाइन तो लंबी होगी। तो सफल, पहली बात, इस गेम से हमें क्या क्या सीखना है, सफल होने के लिए क्या क्या चाहिए। पहली बात, खेलते समय हमारी भावना या इच्छा क्या थी, दो टीम थी। हाँ, बतावे, सक्सेसफुल टीम वाले बताए, जब आप खेल रहे थे तो आपको क्या इच्छा थी मन में, जीत की भावना। हाँ, हमें जीतना है, भावना क्या थी, हमें जीतना, मैं नहीं लेकिन हम। तो हमें सफल होने के लिए हमें जीतना है, ये भावना थी, न कि व्यक्तिगत स्व केंद्रित लिमिटेड कोई चीज कि भी मुझे सफल होना है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, लेकिन क्या था, हमें जीतना। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्री में, बिजनेस से हम जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़े हैं, उन सब के अंदर ये भावना हो कि हमें जीतना है, हमें सफल होना है। वीनेस, नो, नहीं कि आईनेस, माइनेस, मैं और मेरापन नहीं लेकिन हम और हमारा, कि हमें जीतना, ये विशाल भावना, संगठन की भावना होगी तो सफलता। ये नहीं भी मालिक जाने, हम क्या जाने, ये व्यक्तिगत चीज नहीं, हमें सफल। तो सफलता के लिए एक आवश्यकता ये है कि हमारी भावना क्या हो, बेहद की भावना हो, स्वार्थ की सीमित भावना। जीतने के लिए किस विधि को उपयोग में लाए, सहयोग, और आपने क्या क्या किया, बताया ना कि जो था वो सब लगा दी, सारे सोर्सेस लगाए, सूझबूझ पर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे, जो कुछ व्यक्ति के पास था, अपने आप को भी लगा दी, है ना। तो सफलता के लिए क्या चाहिए, डिवोशन, सब कुछ लगा दे, बलिदान, त्याग, सहयोग की भाव, जो भी वस्तुएं उस समय उपलब्ध थी, चाहे मूल्यवान ही क्यों ना हो, आपने जमीन पर लगा है? उस समय ये नहीं सोचा भी ये तो मेरी कीमती चीज है, मैं नहीं निकाल के दूंगा, हा? आपने वो भी लगा। सफलता के लिए चाहिए सर्वस्व समर्पण, पूरी एनर्जी लगा। तीसरी बात, उस समय टीम जो दो थी, हर टीम के जो भी साथी थे, उनके आपस से संबंध क्या था, कॉपरेट, कॉपरेश, हर एक मिलके चले, हर एक ने अपने लगा, ये नहीं चलो भाई ये लगा रहा दूसरा देखता रहा, नहीं, हर एक ने अपना लगाना शुरू। तो आपस में जो था वो टीम स्पिरिट था और अपनेपन का, निकट का संबंध था, और एक दो की चीजें ले लेके भी लगा रहे थे, वो नहीं भी देना चाहता था तो भी उसकी छीन के भी लगाए, क्योंकि सफल हुए। तो अपनापन, अपनेपन की भावना से जहां हम काम करते हैं वहां सफल। इस विश्वविद्यालय का प्रैक्टिकल मैं एग्जाम्पल बताऊं, ये ज्ञान सरोवर जब बना, ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि खांडव प्रस्थ को पांडवों ने मिलकर इंद्रप्रस्थ बना। ये बिल्कुल सामने जैसी पहाड़ियां हैं, ये बंजर पहाड़ियां थी जहां सैकड़ों सालों से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जहां लगन हो, लक्ष्य हो, दृढ़ता हो, टीम स्पिरिट हो, सहयोग और डिवोशन की भावना हो, और मेरा अपना संस्था, मेरी अपनी कंपनी, मेरा अपना बिजनेस, ये जहाँ भावना है, हरेक ने दिल से अपना सहयोग, जिन्हों के पास धन था उन्होंने धन लगाए, बुद्धि थी उन्होंने बुद्धि लगाई, स्किल्स थी कलाएं उन्होंने कला लगाई, शरीर की शक्ति थी उन्होंने कार्य सेवा, जिन्हों के पास समय था उन्होंने समय दी। तो सर्व के सहयोग से सुंदर स्थान सहज ही बने। इसलिए हमारा एक प्रोजेक्ट था सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, इसकी प्रेरणा हमें उस प्रोजेक्ट से आई कि बेहतर विश्व हम सभी बनाना चाहते, सुखमय संसार हम सभी बनाना चाहते। जिस संसार में अभी हम हैं, जिस सिचुएशन में अभी हम हैं, उससे बेहतर हम सब चाहते। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि कैसा संसार हम चाहते हैं, तो आप हरेक अनेक बात बताएं कि ऐसा सुखमय, समृद्ध, संपन्न, संस्कारी, सभ्य, सुशिक्षित, शांतिमय, सुव्यवस्थित ऐसा संसार। पर ऐसा सुखमय संसार कौन बनाएगा, कौन बनाए? सर्व के सहयोग से बने, हम सबको बनाना। कोई राजनेता नहीं बना देंगे, कोई धर्म नेता अकेले बना सकेंगे नहीं, वैज्ञानिक बना देंगे नहीं, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। संसार दुखमय बना, अव्यवस्थित बना, उसका कारण कौन सा वर्ग है? कौन सा वर्ग? हरेक वर्ग, हरेक वर्ग उसका कारण, हरेक के द्वारा जाने अनजाने कोई ना कोई नेगेटिविटी एक्टिव हुई है, तब तो संसार दुखमय बना है। जाने अनजाने हम सब के द्वारा बुराई प्रवृत्त हुई है। उसी प्रकार अगर अब हम सब अपनी अच्छाइयों को मानवता के कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी अच्छाइयों को अगर हम एक्टिव करें, तो हम इसको सुखमय बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते। इसलिए सहयोग, अपनापन, तब जैपनीज लोगों के लिए कहा जाता है कि वो अपनी इंडस्ट्री से में काम नहीं करते हैं, वे अपना जीवन जोड़ते, दे आर मैरिड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना जीवन जोड़ दे, तब सफलता प्राप्त। चौथी बात कि सबका ध्यान कहां केंद्रित था? हाँ, वस्तुओं पर, क्या मिले, चीज निकाले, कौन सी, कहां से, रिसोर्सेस पर केंद्रित। तो सफल होने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारे रिसोर्सेस कौन से, हमारे आंतरिक जगत के वो खजाने कौन से, जिनको हम सही रूप से लगा दे, सकारात्मक ढंग से लगा दे, तो हम सफलता को प्राप्त कर सकते। बाह्य जगत के रिसोर्सेस आप जानते कि हमें सफल होने के लिए क्या क्या चाहिए, लेकिन हम अपने सही तरीके से सफल हों, हम अपने आंतरिक जीवन में सफल हों, हम अपने आंतरिक जगत में सफल हों, उसके रिसोर्सेस हमारे अपने ही अंदर, और वो है हमारे अपने गुण, हमारी अपनी शक्तियां, हमारी अपनी योग्यताएं, जो हर इंसान को प्राप्त है। उन आंतरिक शक्तियों को यथार्थ रूप से हमें लगाए तो हम सहज ही सफलता को प्राप्त कर सकते। तो अब मैं आप सबसे ये पूछती हूं कि अब आप अपने आंतरिक रिसोर्सेस कौन से हैं, हमारे अंतर जगत के संसाधन कौन से हैं, और वो हम कहां कहां लगा रहे हैं। इस पर दो दो की आपस में जोड़ी बन जाएं और 3 मिनट के लिए आपस में विचारों की लेन देन, किस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए, एक दो को अनुभव एक तो बताओ, जीवन में आप जिस बात में सफल हुए उस घटना एक दो को बताओ, ये आप अपने इसको बताओ, ये अपने दो दो की जोड़ी बनी कि आप अपने जीवन में कौन सी बात आई थी और उस समय आप सफल हुए थे, किस आधार पर, वो आप शेयर करें, दो की जोड़ी बन जाए। पहले एक दोस्त से परिचय करिए, शेयर कर लिया, दूसरी बात नहीं करनी है, जो टॉपिक दिया है उस पर ही बात कर दिए कि आपके जीवन में ऐसी कोई बात आई थी और उस समय किस गुण के आधार पर आपने सफलता पाई। हम 5 व्यक्तियों से चाहेंगे जो समझते हो कि हमारी वो बहुत अच्छी अनुभव की बात है और वो शेयर करें शॉर्ट में, एक एक मिनट में। कौन सुनाना चाहेंगे, हाथ ऊपर करें। हाँ आइए, 3, 1, 2 और हाँ आप आ जाइए, बहनों में से कोई नहीं, आइए बस 5 व्यक्ति, अपना शरीर का नाम, कहाँ से आए हैं और कौन सा बिजनेस आप करते हैं, वो 3 बात बता के शॉर्ट में, हर एक को एक एक मिनट है।
मैं सुरेश कुमार साहू, कटनी से, मध्य प्रदेश से पधारा हूँ और मेरा व्यवसाय कटनी में होटल का है। दीदी ने जिस प्रकार से कहा कि इस संसार में या अपने जीवन में कौन सी ऐसी सफलताएं हमने प्राप्त की, मैं समझता हूं कि परोपकार करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसे मैं अपने जीवन में एक धनाढ्य व्यक्ति से सार्वजनिक के रूप में लड़ा था, मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि जबलपुर का हाई कोर्ट कहाँ पे है। उसमें मुझे एक गीत याद आया था, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, वही बीज पनपा पनपना जीतेगा, घुना क्या उगाए उगा है, अगर उग सको तो उगो सूर से तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। धन्यवाद।
वही परोपकार, बांटना दूसरों के लिए, अच्छा करना, कोई कुछ भी करे, इस गुण के आधार पर भाई ने सफलता प्राप्त की।
ओम शांति। मैं वैसे तो सर्विस करता हूँ, लेकिन मेरे लड़के का बिजनेस है जालियां बनाने का, और उसमें कंपटीशन के दौर में हमारा लड़का फेल हो रहा था, तो उसने मुझसे मदद मांगी, तो अचानक बुद्धि ने काम करा कि फैक्ट्री फेल होने का कारण है कि लड़के के अंदर अहंकार, कारीगरों से कार्य ठीक ना लेना। महीने भर तक कार्य ठीक करने की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर सौंपी और हमने लड़के को घर बैठाया, स्वयं फैक्ट्री को संभा दी। तो जाकर के प्रतिदिन उन कारीगरों को चाय पिलाना, उनके बच्चों की देखरेख के लिए पूछना, और शाम को जब वो जाते थे तो उनके लिए बड़े प्यार से कि आप लोगों ने काम बहुत अच्छा कराए, प्रतिदिन को शाबाशी देते थे जबकि वो काम लापरवाही से करते थे। 10 दिन के बाद क्या देखा कि जो कार्य कम निकलता था वो कार्य दोगुना होने लगा। ये हमारी सफलता की निशानी है।
सहयोग, स्नेह, शुभ भावना से सफलता।
ओम शांति। मैं मिसेज उषा वर्मा गुड़गांव दिल्ली से आई हूँ और मैं वैसे तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड बिरला में हैं। और मैं बस छोटी सी यही बात बताना चाहती हूँ कि बहुत साल पहले मेरे हस्बैंड ने मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए कुछ फर्नीचर बनवाया शादी में देने के लिए और वो टाइम पे तैयार नहीं हो पाया और किसी ने उसकी डिजाइन नहीं देखी थी, कुछ नहीं। और शादी के एक दिन पहले ये हुआ कि मेरे इन लॉज में से लोग आ गए बहुत गेस्ट घर में और वो परेशान कि मैं कैसे करूं क्या। मैंने कहा ऐसे करते हैं हम लोग कि किसी को बताते नहीं है और आराम से बचकुइयां रोड में बना बनाया रेडीमेड सब मिलता है सामान, हमने वहीं लेके और उनके घर पहुंचवा दिया और सब लोग बहुत आज तक उस फर्नीचर की तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा दादा ने बनवाया। और शायद उस समय थोड़ी सी सूझबूझ से वो काम भी हो गया और
सफल।
हाँ, सफल हो गया। ओके, ओम शांति।
ओम शांति।
प्रेजेंस ऑफ माइंड कहेंगे, समय पर सूझबूझ।
मैं विकास भारद्वाज बरवाला हिसार हरियाणा से आए हुए मेहमानों, आप सभी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, यहाँ पे युवाओं का अभाव है क्योंकि आप बिजनेस लाइन से हैं, लेकिन युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसके अंदर समझ का अभाव होता है, कल्पनाशीलता होती है लेकिन सच्चाई से विमुख होता है। ऐसी ही अवस्था उस समय की है जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। मैं बहुत महत्वाकांक्षी विद्यार्थी था, मेरे सपने बहुत ज्यादा थे, लेकिन मैं भटकाव की स्थिति में आ गया और अच्छी मेहनत नहीं कर पाया, मेरे एग्जाम अच्छे नहीं हुए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मैं चला गया। हार कर मैंने जो है आत्महत्या करने का निर्णय लिया और 29 मार्च 1998 को मैंने पॉइजन ले लिया आत्महत्या। यह मेरे जीवन का सबसे दुखद क्षण था। उस समय जब मैंने पॉइजन लिया तो मेरे सामने एक बात उभरी थी कि भाई व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, आदमी के जीवन की उपयोगिता क्या है। यहाँ इतने सारे लोग जी रहे हैं लेकिन वो जी रहे हैं या ढो रहे हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, यही सब पशु करते हैं। एक पशु के साथ मैंने अपनी जीवन की कंपेयरिंग की कि एक पशु में और मेरी जिंदगी के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, खाता हूँ, सो जाता हूँ, उठ जाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं दे रहा और यदि समाज को कुछ दे नहीं रहा तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं है, इससे अच्छा है मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करूं। यह सोच के मैंने पॉइजन ले ली। लेकिन सौभाग्य से मेरे पेरेंट्स ने मेरी सही समय पे देखरेख की, केयर की, मुझे हॉस्पिटल, वहां पे मुझे बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ा। मेरे दोनों फेफड़े वहां पे फट गए, अंदर पस पड़ गई और मेरी मानसिक हालत भी बहुत खराब हो गई। मेंटली मैं 2.5 महीने तक कोमा में रहा। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा और 2002 में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने मेरे को मना कर दिया, यहाँ मेरे गले की पूरी सांस लेने की पाइप खराब हो गई थी, कि आपका इलाज संभव नहीं। मैंने परिस्थितियों से हार कर पॉइजन तो ले लिया था लेकिन कुछ एक अच्छे व्यक्तियों का, विशेषकर ब्रह्म कुमारी संस्था में मैं संपर्क में आया था, उन लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मेरे साथ था। उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन से उनने जो मुझे करेज दिया, जो आत्मविश्वास की भावनाएं दी, जिनको समय के एक चक्र में फंस के मैं भुला बैठा था, उन्हें मेरे मन में जागृत हुई और मुझे जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और मैंने संघर्ष किया कि मैं जीवन जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, मुझे जीना है, हर हालत में जीना है और सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीना है। जिस समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है मैं भी उसको कुछ दूंगा, ऐसा मन में दृढ़ संकल्प किया मैंने और मैंने अपने ग्राम स्तर पे ऐसे प्रयास शुरू किए। ग्राम का विकास वो लोग संगठित हूँ, मैं समाज सेवा में समर्पित हुआ। साथ में मैंने अपने रोजगार के लिए भी एफर्ट्स किए क्योंकि बेरोजगारी भी यूथ का एक अभिशाप होती है, उसे खाई जाती है। मैंने अपना बिजनेस सेट किया, आज हमारी डिजिटल फोटो लैब है, वीडियो प्रोडक्शन का काम है और मैं जीवित भी हूँ, 4 आदमियों के लिए काम करता हूँ। तो साथियों, मेरा जो कहने का भाव है वह यह है, कि जीवन जीना भी अपने आप में एक सफलता है, जीवन जीने की कला सीखी, यही सीखी। थैंक यू।
मैं इंद्रलाल घेरेला गांधीनगर कोल्हापुर से आया हूँ। मेरी पढ़ाई चौथी तक सिर्फ हुई है। मैं 89 में जीरो बैलेंस से अपना बिजनेस चालू किया हूँ। आज मैं बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ अपनी दृढ़ता से और एकाग्रता से। थैंक यू।
बहुत सुंदर अनुभव भाई बहनों ने बताया, और आपने इन सब के अनुभवों से कौन सी एक बात पाई सार रूप में, इसेंस रूप में हम इससे क्या लेसन सीखे कि जीवन में समझदारी, गुण, आध्यात्मिक बल, यही चीजें हैं जो समय पर हमें मदद करती है और जीवन में आई हुई मुसीबतों को पार करने में और सफल होने में हमें मदद करती। इसलिए दो चीजें हमें अपने जीवन में अवश्य करनी है कि एक तो हमें कहते ना, आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु। अगर हम अच्छे गुणों से, शक्तियों से, कर्मों से युक्त है तो हम अपने ही मित्र है, और वहीं अगर हम बुराई, अवगुण और कई प्रकार की कमियों से भरे हैं तो हम खुद ही खुद के शत्रु होते हैं। इसलिए इसी बात को हम कहते हैं कि स्वयं के प्रति हम ध्यान दें, वो कला हम सीखें, अंतर्मुखी बनकर खुद को देखें, हम कौन हैं, क्या है, कहाँ खड़े हैं, खुद साक्षी होके खुद को देखना बहुत जरूरी। दूसरे अगर कोई कुछ हमें कहेंगे, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो वो हमें बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और उस समय हमारा जो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अभिमान, वो उसको रेजिस्ट करता है कि मेरी क्या बात करता है, तुम्हारे में भी चार अवगुण। लेकिन जब आप स्वामी स्थित होकर अंतर्मुखी बनकर रोज खुद को देखेंगे तो हम सही रूप से अपने आप को पहचान सकेंगे कि हम कौन हैं, हमारे में क्या क्या विशेषताएं हैं और हमारे में क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस है जिसको हमें ओवरकम करना। इस अर्थ में हम कहते हैं कि आध्यात्मिकता की आवश्यकता। आध्यात्मिकता की आवश्यकता का अर्थ आप ये नहीं लेना कि कोई क्रियाकांड करने की बात है, कोई आसन प्राणायाम की बात है, कोई पूजा पाठ की बात है, और हम समझते हैं कि अभी हमें टाइम नहीं है, हम बूढ़े होंगे तब करेंगे। नहीं, इस प्रकार की सेंस रखना, समझदारी रखना, ज्ञान रखना, स्वमे स्थित होना, स्वचिंतन करना, ये भी आध्यात्मिकता के अंतर्गत ही आता है। और दूसरी बात जो भाई ने बताई कि जीवन केवल हमारे अपने लिए नहीं, मैं ये सदा सोचती हूँ कि मेरा अपना अस्तित्व भी केवल मेरे अपने से नहीं, मेरा अपना अस्तित्व भी प्रकृति के सहयोग से है, माँ बाप की पालना से है, साथी बंधुओं के सहयोग से है, शिक्षकों के संस्कारों से है, समाज की व्यवस्थाओं के लाभ से है। तो मेरा भी कर्तव्य है कि इन सब के लिए भी मुझे कुछ करना है, जितना भी मैं कर सकूं, कितना वो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जितना भी हम कर सके दिल से, प्यार से और निस्वार्थ भाव से करें तो उसमें जो खुशी और आनंद है हमें अपने आप में सेटिस्फेक्शन होगा, और वो सेटिस्फेक्शन हमारे जीवन के अंदर प्रसन्नता लाती, और तब हमें महसूस होता है कि नहीं, हमारा जीवन सफल है, हमने इस दुनिया में आकर केवल अपने आप के लिए नहीं जिया है, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ किया। तो मैं चाहूंगी कि सभी व्यापारी भाई बहने, उद्योगपति भाई बहने सफलता को इस नई दृष्टि से देखें। केवल ये नहीं सोचे प्रॉफिट नहीं हुआ हम सक्सेस नहीं हुए, हमें नुकसान हुआ हम असफल हो गए। नहीं, जीवन के हर एस्पेक्ट में हमें सफल होना है और हमारे अनुभव से जो अपने आंतरिक रूप में सफल है फिर वो हर क्षेत्र में सफल होता है। वो हर क्षेत्र में फिर सफल होगा, परिवार में भी होगा, उद्योग में भी होगा, जो स्वयं में सफल। तो हम 3 मिनट अंतर्मुखी बनकर बैठेंगे, मैं कुछ सजेशंस दूंगी, उस आधार पर आप चिंतन करेंगे, खुद को देखेंगे और फिर इस सत्र को हम समाप्त करेंगे। मन को समेट ले, अंतर्मुखी बन जाए, अब हमने अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान लिया है। शारीरिक स्वरूप वो मेरा बाह्य स्वरूप है, चैतन्य ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप वो मेरा आंतरिक स्वरूप है। अपने आत्म स्वरूप में केंद्रित हो जाए, मैं एक विशेष आत्मा हूं, केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, परमात्मा की संतान, महान आत्मा हूं। इस विश्व नाटक की हीरो पार्टधारी सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं विजयी आत्मा हूं। जीवन है, माना परिस्थितियां तो आएंगी ही, मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाऊं जो परिस्थितियां मुझ पर हावी न हो जाएं।
मैं अपने सद्गुणों से सद्बुद्धि से परिस्थितियों का परिवर्तन कर दूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शांत और स्थिर अचल अडोल ओम।